तो रति को देखकर करुणा छा गई, रति को आशीर्वाद दे दिया। भगवान शिव जी जागृत बैठे हैं, यहाँ सब स्वार्थी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी आते हैं और शंकर जी की प्रशंसा करने लगते हैं। भगवान शंकर मना कर देते हैं कि प्रशंसा मत करो, मूल बात बताओ है क्या। और ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज स्वार्थी बहुत है ना देवलोग, कहा कि सब देवता मेरे पीछे पड़े हैं कि कई समय से किसी की शादी नहीं होती, किसी की बारात में जाने का अवसर नहीं, देव समाज बिल्कुल निरस हो चुका है। तो मैंने कहा चलो शिव जी से प्रार्थना करें और उसकी शादी हो जाए तो देवलोग उत्सव मनाएं, सबकी इच्छा है आपका ब्याह हो। मूल बात नहीं बताई कि आपका ब्याह हो, बेटे का जन्म हो तो तारकासुर मरे और हम शांति की नींद ले, लेकिन स्वार्थी लोगों की ऐसी ही रजूआत होती है। शंकर जी समझ गए, देवताओं मैं समझता हूँ तुम स्वार्थी हो, तुम्हारे कहने पर मैं शादी के लिए राजी नहीं होऊंगा, लेकिन भगवान ने मुझे आज्ञा दी है इसलिए मैं शादी करूंगा। हाँ कह दी, बिगुल बजा दिए देवताओं ने। इतने में सप्तऋषि आ गए और उसको हिमाचल प्रदेश भेजा गया। पुनः पार्वती की कसौटी की, पार्वती उत्तीर्ण और हिमाचल को काम दहन रति वरदान की बात सुनाई, विप्रबंध आ गए, वेद विधि से लग्न पत्र तैयार हुआ। सप्तऋषि पत्र लेकर ब्रह्मा के पास आए और ब्रह्मा को लग्न पत्र दिया। ब्रह्मा जी पत्र पढ़कर सबको सुनाते हैं कि सब देवलोग तैयारी करो, बहुत कम दिन आए हैं, जल्दी भगवान की बारात लेकर हम जाएं। सब स्वार्थी देवता पत्र की बात सुनकर अपने अपने देह को, अपनी देवियों को, अपने विमान को सजाने लगे। लेकिन मानस में आप स्पष्ट पाओगे कोई भी देव दूल्हे को संवारने नहीं गए, कितने स्वार्थी होंगे। वरना सबको पता था कि ये दुल्हा ऐसा है, उसको न माता पिता है, न भाई भगिनी है, न कुछ, अकेला है, जिसकी शादी होने वाली वो अकेला बैठा है और देव अपने आप को संवारते, कितने स्वार्थी। तो कुछ गण लोग जो थे शंकर जी के भूत प्रेत जो थे वो शंकर जी को संवारते हैं दुल्हे के रूप में और बाद में शंकर जी की बारात। लेकिन ये बारात की कथा कल सुबह 8:30 बजे, आज इतना ही। भगवान शिव जी की बारात के लिए सब देवताओं ने अपने अपने शरीर को, अपनी अपनी देवियाँ को, अपने अपने विमान को संवार लिया। हमने कल भी चर्चा की कि देवलोग इतने स्वार्थी रहे कि कोई देव दुल्हे को संवारने को नहीं गया, वरना सब जानते थे कि ये दुल्हे को कोई नहीं है। कुछ गण जो भगवान शंकर जी के थे वो शंकर जी को श्रृंगार करते हैं, ऐसा वर्णन है। आइए हम सब चौपाइयों के माध्यम से भगवान चंद्रशेखर का श्रृंगार करें, सब सुनिए और गाइए। शिव ही शंभु दन कर ही श्रृंगारा, ही संभोगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, जटा मुकुट अहि ललाट सुंदर सिर गंगा, ललाट ललाट सुंदर सिर गंगा,
नयन तीन रूप भी तभुजंगूरा गरल कंठ पुरहर सिर माला अशिव वेश शिव धाम कृपाला अशिव वेश शिव धाम
श्रृंगार करने लगे। इस श्रृंगार का जो वर्णन है उसको जरा गौर से सुने। आज हमको दोपहर तक राम जन्म तक पहुंचना है, इसलिए कथा के प्रसंग को हम संक्षिप्त कहेंगे, लेकिन कुछ महत्व की जो बातें हैं उस पर विशेष प्रकाश डालते जाएंगे। भगवान शंकर को गण श्रृंगार कर रहे हैं, तो सबसे पहले गणों ने भगवान शंकर जी के श्रृंगार के लिए जटा मुकुट अहिमौर संवारा। भगवान शंकर जी ने जब काम को जलाया तो क्रोध में अपनी जटा बिखर चुकी थी, उसको एक गण ने आकर ठीक कर दी और जटा का मुकुट बना दिया। एक गण ने आकर मुकुट के ऊपर एक सांप को रखकर अहिमौर लगा दिया। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कान में कुंडल की जगह हाथ में कंकन की जगह सर्प पहनाए गए। एक गण गया स्मशान से भस्म ले आया और दुल्हे के शरीर पर पूरे बदन पर भस्म का लेप कर दिया। बड़ी मुश्किल से प्रार्थना करके भगवान शंकर को एक मृगचर्म कटिभाग पर पहनाया गया, क्योंकि और नगर जाना है, समाज के बीच में जाना है, इसलिए मर्यादा जरूरी है। तन विभूति पटके हरी छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, गंगा बह रही है, ललाट में चंद्र सोह रहा है, यज्ञों को भी 20 सर्पों की लगाई है, 3 नेत्र हैं, गरल कंठ विष भरा है, कंठ में उर नरसिर माला, कंठ में मनुष्य की खोपड़ी की माला पहरी है। अशिव वेश शिव धाम कृपाला, देखने में अशिव लगता है, अभद्र लगता है, लेकिन मंगल का धाम है, ऐसा श्रृंगार स्पष्ट बताया। अब सोचें कि ये श्रृंगार का जो वर्णन है सब विश्वास के लक्षण है। भगवान शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भगवान शिव जी विश्वास के साक्षात स्वरूप है, और विश्वास के लक्षण क्या होते हैं ये श्रृंगार के माध्यम से पता लगता। सबसे पहले ठीक से चिंतन करने से लगता है कि विश्वास जो होता है उसके ऊपर जटा मुकुट हुआ करता है। जटा का अर्थ तुलसी दर्शन में यह है कि हमारे जीवन की उपाधियां, जीवन की व्याधियां, जीवन की जंजालें, ये सब जटा है। जिस जो विश्वास रूप है, जिसके जीवन में अखंड विश्वास है, वो विपत्ति से घबराएगा नहीं, विपत्ति को अपना श्रृंगार बनाएगा। विश्वास भागेगा नहीं, विश्वास सतत जागेगा। अहिमोर, मोर शब्द का भगवान श्री कृष्ण मोर पंख रखते थे, राम जी के सर पर भी कभी कभी मोर पंख बताया है। मोर का अर्थ है निष्कामता, आपने सुना होगा कि मोर शरीर से कभी काम नहीं भोगता। जो संपूर्ण शरीर से निष्काम है उसी का पंख भगवान कृष्ण सर पर रखते हैं। यहां मोर शब्द का प्रयोग किया है, वो भी विश्वास वो है जिसमें कोई कामना ना। परमात्मा की भक्ति करे और कामना रखे तो विश्वास कहां? रामायण में उसका प्रमाण बाबा जी कहते हैं, मोरे आदास मोरे दास कहाई नर आसा, मोरे दास कहाई नर आसा, करही तो कहूँ कहाँ विश्वासा, करही तो कहूँ कहाँ विश्वास। मेरा दास होकर यदि आशा रखे यदि कामना रखे तो कहिए विश्वास कहाँ, कहाँ विश्वास रहा। तो विश्वास का एक तीसरा लक्षण है निष्कामता। अहिमोर समारा कुंडल कंकन पहिरे वाला, सर्प के आभूषण लगाए हैं भगवान शंकर ने। विश्वास का एक ये भी लक्षण है कि विश्वास को दृढ़ता है कि संसार के जितने गहने हैं यदि उसमें हम आसक्त हो जाएंगे तो वो सर्प की तरह दंश देगा। रखते हैं जरूर लेकिन सावधानी से रखते हैं। विश्वास वो है, दृढ़ विश्वास का स्वरूप वो है जिसके मस्तिष्क से भक्ति की गंगा बहती है। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास भक्ति हो ही नहीं सकती। तो विश्वास का ये भी एक लक्षण है कि जिसके सर से भक्ति का प्रवाह सतत प्रवाहित हो। और भस्म लगाई, भस्म लगाने का अर्थ है शरीर नाशवंत है। विश्वास को पक्का यकीन है कि यह शरीर एक बार नष्ट होने वाला है, जरा भी आशंका नहीं उसमें कि यह शरीर नष्ट होने वाला है। तो विश्वास का ये भी एक लक्षण हम ठीक से समझे कि जाना है। तो हमको ऐसा लगता है कि ये जो श्रृंगार की कुछ बातें हैं वो विश्वास के कुछ चंद लक्षण बताए। अब दूसरे अर्थ में देखें, हमारे संसार में कोई दुल्हे की शादी होती है तो हम जानते हैं कि वो सुगंधी द्रव्य अपने शरीर पर लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे, हमारे गुजरात में तो पीठी लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं। लेकिन शिव जी जब ब्याहने को गए तो भस्म लगाए क्यों? दुनिया को बताया कि मैं शिव हूँ, मैं भी शादी के लिए जा रहा हूँ, जीव तुम भी शादी करो, जरा भी हरकत नहीं। लेकिन एक बात का ख्याल करना, ये शरीर एक बार चिता की भस्म होने वाला है। इतनी जागृति बन गई, शरीर एक बार नष्ट होने वाला है, सब जानते हैं लेकिन फिर भी जागृति नहीं। हमारे कई बाप दादा चले गए, हम चले जाएंगे, हमारे बाद के लोग भी चले जाएंगे, ये अनिवार्य सत्य है, फिर भी धारणा दृढ़ नहीं होती। तो भस्म लगाकर ये बताया, माटी का है पुतला, एक दिन माटी में मिल जाएगा और चिता की आग में तेरा तन बदन जल जाएगा। न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, न मंदिर की मीना होगी, न मस्जिद का पता होगा, रहेगा नाम मालिक का, आखिर सब ही फना होगा। ये भस्म है। महात्मा लोग नित्य सुबह शाम संध्या में भस्म का लेप करते हैं क्यों? बड़े त्यागी लोग पूरे बदन पर भस्म लगाते हैं क्यों? इसलिए कि एक स्मरण बना रहे कि ये शरीर एक बार भस्म होने वाला है। शादी जरूर करे, संसार में जरूर रहे, सावधानी के साथ। दूसरी बात, संसारी दूल्हे की शादी होती है तो सोने चांदी के गहने पहनता है, अपने घर में न हो तो किसी से लेकर, मित्रों से लेकर पहनेगा। शिवजी की शादी हुई तो सर्पों के गहने पहनकर जगत को बताया कि संपत्ति का अतिरेक सर्पदंश है, संपत्ति का अतिरेक विपत्ति है। सुख की व्याख्या तुम लोग क्या करते हो? हद से संपत्ति बढ़ जाना उसका दूसरा नाम विपत्ति है। जिस संपत्ति के अतिरेक से तुम चैन से सो न पाओ तो तुम कहां के सुखी हो? साधु लोग आंख बंद करते हैं, जब सोना चाहे सो सकते हैं, जब जागना चाहे जाग सकते हैं। संपत्ति अच्छी बात है। भारत में लक्ष्मी की आलोचना नहीं, इसलिए तो ऋषियों ने श्री सूक्तम का पाठ किया है, लक्ष्मी की वंदना की है, लेकिन उसका अतिरेक, अतिरेक सब बात में दुखदायी होता है। सुख का अतिरेक, उसका दुख, दूसरा नाम दुख है। गौर से ध्यान दे, कोई तुम्हें बार बार पत्र लिखे कि आप हमारे घर आओ, आप हमारे घर आओ, बार बार लिखे मानो, और बहुत प्यार से लिखे, और कई दिनों के बाद आप उसके घर जाएं और जिसने आपको पत्र लिखा है वो बहुत प्रेम से दौड़कर आपको सीने से लगा ले, आपको कितना आनंद होगा कि इतना इतने पत्र लिखे और बड़ा आतिथ्य किया, बड़ा प्यार दिया, लेकिन आपको सीने से लगाने के बाद छोड़े ही नहीं, तो दबाते ही जाए, तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट छोड़ेंगे नहीं, तो पुलिस को बुलाने होते। सुख का अतिरेक दुख हो जाता है, संपत्ति का अतिरेक विपत्ति में परिणित हुआ करता है। इसलिए भगवान से भी कहना कि यदि संपत्ति हमको देनी हो तो हमारी पात्रता के अनुकूल ही दे, ज्यादा मत दे। तो सर्प के गहने पहनकर दुनिया को यह बताया कि आसक्त न रहे, बस। तीसरी बात, जीव की शादी होती है तो घोड़े पर बैठता है, शिव जी जब शादी को चले तो नंदी पर बैठे, बैल की सवारी की। नंदी का मतलब है, नंदी हमारे धर्म में, संस्कृति में धर्म का स्वरूप माना गया है, चार चरणों वाला नंदी। हमारे धर्म की व्याख्या में जो आप सब जानते हैं, सत्य दया दान तप, ये चार चरण धर्म के हैं। शिव जी ने दुनिया को बताया कि मैं शादी को जाता हूँ तो धर्म के ऊपर मेरी सवारी है, अधर्म के ऊपर सवारी है। शादी के बाद धर्म चुकना नहीं, धर्म को ज्यादा निभाना। शिव मंदिर में नित्य नंदी सामने रहता है, क्या मतलब कि हम धर्म के अभिमुख हैं। शिव मंदिर में दो बात बड़ी चिंतनीय है, एक तो नंदी शिव जी के सामने रहता है, दूसरा कछुआ नंदी। क्या मतलब, कछुए का मतलब है जब चाहता है अपने पैर को बाहर निकालता है, चाहता है पैरों को भीतर ले लेता है, वो संयम का प्रतीक है। हर गृहस्थ को शिव की तरफ ऐसा संयम होना चाहिए कि जब चाहे हम अपनी इंद्रियों का बढ़ावा करें, चाहे उसको संकोच कर लें। संयम का प्रतीक है कछुआ, और सतत धर्म के सामने शिव जी बैठते हैं। तो शादी करने के बाद हे जीव, तेरे जीवन में संयम होना चाहिए, यदि संयम नहीं तो जुआनी में तो पता नहीं लगेगा, लेकिन बुढ़ापे में और अंत के समय संयम की गैर मौजूदगी बहुत सताएगी। आपने सुना है जब इंसान की मौत होती है, ये अनुभव के बिना केवल व्याख्या ही है लेकिन सही लगती है इसलिए करता हूं, कि जब किसी की मौत होती है तो चार प्रकार के दुख उसको घेर लेते हैं। सबसे पहले जब मौत का वक्त आता है तो पहला दुख उसको घेर लेता है, जिसका नाम यदि हम देना चाहे तो शरीर वेदनात्मक दुख। इस जड़ बदन से चेतन को विलग करना, उस वक्त हम कभी कभी देखते हैं ना, कोई मरने जा रहा है तो कितना तड़पता है, कितना दुखी होता है, कितना परेशान होता है। कभी कभी भगवान को लोग प्रार्थना भी कर लेते हैं कि ये आदमी अब छूट जाए तो अच्छा। गांधी जी के आश्रम में एक, मैंने सुना है ऐसा कि एक पशु था या तो गाय का बछड़ा कुछ ऐसा था, और इतना वो पीड़ा से भर गया कि गांधी जैसे अहिंसक पुरुष सह नहीं पाया, और उसने कह दिया कि भले ही हिंसा हो जाए लेकिन उसको अब मौत मिल जाए। गांधी जैसा अहिंसक आदमी, बाद में जैन लोगों ने बहुत विरोध कर दिया उस जमाने की बात, लेकिन गांधी जी ने प्रार्थना की कि इस बछड़े की मौत हो जाए तो अच्छा, क्योंकि बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है जब शरीर छोड़ता है। तो मृत्यु के समय सबसे प्रथम दुख होता है शरीर वेदनात्मक दुख। दूसरा दुख है सुहृद मोहात्मक दुख। अपने जो सुहृद होते हैं, अपने जो कुटुंब के परिवार के सदस्य होते हैं, उसमें जो मोह है उसका दुख होता है, कल उसका क्या होगा, मेरे बेटे हैं बेटी हैं बच्चे हैं, पत्नी है, माँ बाप हैं, भाई भगिनी हैं, सब परिवार फैला हुआ है। मौत के समय साधक को तो नहीं, जीव को ये दुख होता है, जिसको सूरत मोहात्मक दुख कहता है, उसका क्या होगा, मेरे बाद वो क्या करेंगे, ऐसी चिंता होती है, ममता है ना। तीसरा, पाप स्मरणात्मक दुख। जब जीव जड़ शरीर से निकलता है तो पाप का सुमिरन होता है।
तापस अंध शाप सिधि आई, तापस अंध शाप।
महाराज दशरथ जी जो ब्रह्म के पिता रहे, लेकिन जब शरीर छोड़ने का समय आया तो पाप दिखाई देने लगा।
तापस अंध शाप सिधि आई, तापस अंध सब कथा सुनाई। कौशल्य सब कथा सुनाई।
तो एक तीसरा दुख है, जीव जब जाता है तब पाप स्मरणात्मक पाप सब दिखाई देंगे। याद रखना, जितने जितने जीवन में किया वो सब मौत के समय सिनेमा की पट्टी की तरह सामने आते हैं। कभी कभी हम देखते हैं ना लोग कि कोई मरने जा रहा है तो आंखें खोलकर टकटकी लगाकर किसी को, लोगों को लगता है कि हमको देखते हैं, उसके सामने इधर उधर हाथ करोगे तो भी पता नहीं लगेगा, बार बार चिल्लाओगे कि दादा हम खड़े हैं, वो क्या देखता है, वो अपने किए हुए कर्म की पट्टी देख रहा है। पाप का स्मरण होता है। और चौथा दुख है भविष्य चिंतात्मक दुख, अब मेरा क्या होगा, ये शरीर छोड़कर मैं जा रहा हूं, अब क्या होगा, ये चौथा दुख। यदि इन चारों दुखों से निवृत्त होना हो तो आज से सावधान हो जाए। मरना तो है ही, शरीर वेदनात्मक दुख से यदि बचना है तो संयम निभाएंगे। यदि युवानी में संयम नहीं रहा तो शरीर वेदनात्मक दुख बहुत सताएगा। यदि संयम रहा तो शरीर से चेतना ऐसे विलग हो जाएगी जैसे कल हमारी चर्चा चल रही थी, त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर् मुक्षीय मामृता। मृत्यु से हमारा छुटकारा ऐसे हो जाए, लेकिन मां अमृता अमृत से हमारा छुटकारा कभी ना हो। यदि संयम रहा तो ऐसे जीवन की धारा से हम विलग हो सकते हैं। संयम का आचरण करें। दूसरा, अपने परिवार के लोगों की चिंता होती है, उसमें जो मोह है उसका दुख है, तो युवानी से जब से जागृति आए तब से सोचे कि ये संबंध कायमी संबंध नहीं है। एक सूत्र आप यदि याद रखे तो रख ले, मेरी प्रार्थना, हमको ऐसा लगता है कि कितना ही तुम प्रयास करो लेकिन यहां ऐसा नियम है, परमात्मा की सृष्टि में ऐसी व्यवस्था है कि जगत को पकड़ा नहीं जाता और ईश्वर को कभी छोड़ा नहीं जाता। तुम कितना ही प्रयास करो, यहां दुनिया को पकड़ने की व्यवस्था ही नहीं है, और कितने ही तुम नास्तिक बन जाओ लेकिन परमात्मा से छुटकारा पाने की यहां व्यवस्था ही नहीं। न परमात्मा को तुम छोड़ सकते हो, चाहे रावण हो या ऋषि हो, कोई न कोई ढंग से तुम्हें परमात्मा के साथ जुटना ही पड़ेगा। एक न दिन कभी न कभी परमात्मा को पाना ही पड़ेगा। जन्म जन्म की यात्रा करो लेकिन मंजिल वो है, वहां गए बिना शांति नहीं, तो उस तरफ जाना ही होगा। तो देर क्यों, आज से ही क्यों न शुरू करें, जाना तो होगा ही। तो सुरत में जो मोह है, हम कल भी चर्चा कर रहे थे, गत जन्म में क्या थे, अब क्या है, भविष्य में क्या होगा पता नहीं, इसलिए सावधानी से जिए। तीसरी बात, पाप स्मरणात्मक दुख अंत में सताए ना, इसलिए भजन करें और जीवन को सरल रखें। बहुत सरल जीवन बनाया जाए, सीधा साधा जीवन निर्माण करो ताकि पाप न हो। और मैं अक्सर कहता हूं कि जब श्रृंगी ने मानसिक मंत्र शक्ति का प्रयोग किया होगा और दुनिया भर के भूत प्रेत आए होंगे, तो स्मशान तो सभी जगह होते हैं ना, हिंदुस्तान में ही सभी जगह पर स्मशान, अमेरिका सभी जगह होता है, मौत तो सबको। तो शंकर जी की शादी में जो भूत प्रेत आए होंगे उसमें कुछ अमेरिका से भी आए होंगे, अफ्रीका से भी आए होंगे, जापान से, दुनिया भर के आए होंगे। यहाँ के भूत प्रेत जो गए होंगे हिंदुस्तान के, वो हर हर बोलते होंगे, और अमेरिका से आए होंगे वो हाय हाय बोलते होंगे। हम अमेरिका गए तो ह्यूस्टन में कथा थी, तो वहाँ के युवक युवतियों ने एक नाटक किया, तो रामायण की कैसेट को सुनकर उसका भाषांतर करके अंग्रेजी में नाटक रचा। तो हमको बला बिठाया गया कि आप देखें, हम बैठे। तो युवान भाई बहनों ने बड़ा परिश्रम करके रामायण को बड़ा न्याय दिया, जहाँ तक संवाद का संबंध था, तो बहुत सुंदर नाटक, लेकिन इंग्लिश में, अंग्रेजी में। भारत की बात और अंग्रेजी में कैसी लगे, इतनी विचित्र लगे, क्या बताएं। हमारी कथाएं, हमारी बातें, हमारी संस्कृति जितनी हमारी भाषा में निखरती है, इतनी विदेशी भाषा में नहीं निखरती। इसका मतलब ये अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी भाषा की आलोचना नहीं है, लेकिन हमने देखा अंग्रेजी में रामायण, दशरथ जी कैकेयी जी के, ये हमने देखा, जो हमने सुना सो आपको बता रहा। दशरथ जी कैकेयी जी के पास आए और कहने लगे, प्लीज प्लीज, एक कैसा लगता है, ऐसा लगता है। इतने में मंथरा आई और कैकेयी को कहा, मिनिस्टर सुमंत आ रहे हैं। वो तो मैं बोल रहा हूँ, वो तो अंग्रेजी में बोलो, क्योंकि हमको अंग्रेजी का अभ्यास नहीं। मेरे कहने का मतलब, अपने बच्चे को अंग्रेजी जरूर पढ़ाओ, मना नहीं, विश्व की भाषा है, इसकी आलोचना नहीं, बड़ी अच्छी भाषा है, लेकिन अपनी भाषा चूक न जाए इसका ख्याल करना, क्योंकि संस्कृति टिकेगी अपनी निजी भाषा। हमारे बम्बई के कवि सुरेश दलाल ने लिखा कि आजकल महानगरों के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े और बाद में कृष्ण की बात अंग्रेजी में करें। कृष्ण का रंग डार्क था, कृष्ण को बटर बहुत भाता था, फ्रीज खोले और बटर खाया करे, कहाँ फ्रीज, कहाँ गोकुल, कहाँ कृष्ण, कितना अभद्र लगता, जमता नहीं। एक बार रिवर के किनारे पर खेल रहे थे और बॉल रिवर में गिर गया, आधा गुजराती आधा हिंदी कुछ। मैं, मुझे केवल इतना ही कहना है कि अपनी संस्कृति, अपनी भाषा में, हिंदुस्तान की भाषाएं कितनी समृद्ध है, चाहे कोई भी मुल्क की, यानी अपने अपने प्रदेश की, चाहे गुजरात की हो, महाराष्ट्र की हो, बंगाल की भाषा भी कितनी, बंगाल का साहित्य देखिए, बड़ा आदर होता है, बड़ी समृद्ध भाषा, हमको तो आता नहीं, क्या करें, बड़ी अच्छी। अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा दें, अंग्रेजी जरूर पढ़ाए, लेकिन मूल बातें चूक न जाए। आँख फूट जाएगी तो अंजन क्या काम का, ये हमारा दृष्टांत नहीं, हमारे बाबा का दृष्टांत। अंजन काहे आँख को फूटे, गोस्वामी जी कहते हैं, जब आँख ही फूट गई तो अंजन का क्या काम, क्या करोगे तुम अंजन, ये सब अंजन है, लेकिन तभी शोभास्पद है जब आँख है, आँख ही खत्म, अंजन क्या करे। जाके प्रियन राम वैदि, उसी पद में यही दृष्टांत दिया, अंजन का आंख को फूटे।
हम विनोद में कहा करते कि जो देश विदेश से भूत प्रेत आए होंगे तो अपनी अपनी भाषा में शंकर जी तो सकल कला गुण धाम सब भाषा उसको आती होगी इसलिए सब समझ लेते होंगे क्योंकि वो तो सकल कला गुण धाम ऐसा लिखा है रामायण। भूत प्रेतों का मेला लग गया शंकर जी के चारों ओर और अब देवताओं को तकलीफ हुई क्योंकि कोई देवताओं को दुल्हे के पास जाना हो तो वो भूत प्रेत रोकते थे कि पहले हमको मिलो बाद में वहां जाओ। एक अर्थ भूत प्रेत का होता है अपना विचार, हमारे जो विचार हैं संकल्प विकल्प और विचार की जो अति व्यस्त धारा है वो भूत प्रेत हैं जो सबको घीर कर रहे थे और विचारों का प्राबल्य ही हमको शिव के पास पहुंचने नहीं देता, चारों ओर विचारों की भूतावल लगी हुई। तो भगवान शंकर और उसके सेवक गण को देखकर देवलोग बोलने लगे, बाबा जी कहते हैं जस दूलह तस धनी बराता, जस दूलह तस दूलह तस धनी बराता, कौतुक विविध होगे मग जाता, कौतुक विविध मग जाता, जस दूलह तस बनी बराता, जस दूलह तस बनी बराता, जैसा दुल्हा वैसी बारात बन गई। देवलोग मजाक करने लगे, कौतुक विनोद होने लगा और ऐसे पूरा समाज चला हिमालय प्रदेश। यहाँ हिमाचल ने बड़ा प्यारा मंडप रचाया अपनी बेटी के लिए, जिस मंडप में दुल्हन के रूप में माँ पार्वती बैठने वाली हो, दुल्हे के रूप में भगवान चंद्रशेखर, इस मंडप का वर्णन भला कौन करे। पहाड़, नदियाँ, सरोवर, सागर, वनस्पति मात्र सब काम रूप देह धारण करके हिमालय के घर मेहमान बन चुके थे। बड़ा प्यारा प्रदेश सजाया गया है और यहाँ बारात धाम धूम से आई। देवताओं ने सोचा कि दुल्हे और दुल्हे के समाज को यदि सबसे आगे रखेंगे तो जो सम्मान के लिए लोग आएंगे उसमें से दुल्हे को देखकर कोई रुकेगा नहीं, सब भागेगा क्योंकि बेशी ऐसा, और दुल्हे का अपमान होगा तो बाद में हमारा कौन सम्मान करेगा, हम पीछे रहेंगे। तो देवताओं ने सोचा कि पहले हम रहे ताकि हमारा सम्मान हो जाए, हमको निवास मिल जाए, हाँ शंकर जी को अंत में रखे ताकि दुल्हे का अंत में जो होना सो हो, कितने स्वार्थी। और देवताओं ने सोचा कि दुल्हे को तो निवास की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि उसको तो स्मशान में भी ठीक रहता है तो वो तो वहीं भी निवास कर सकता है। तो सबसे पहले विष्णु, बाद में इंद्र, वरुण, कुबेर, सब देवताओं की कतारें लग गई, अंत में शिव जिसकी शादी हो रही है वो बिल्कुल पीछे। शंकर जी को किसी गण ने पूछा कि मालिक शादी आपकी हो रही है और आपको पीछे रखते हैं, बोले जिसको सम्मान की इच्छा हो वो भले ही आगे रहे, हमें सम्मान से क्या लें। गीता के हर सूत्र भगवान शंकर जी में और हनुमान जी में चरितार्थ होते हैं। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिर मति भक्तिमान में त्रियो नर। निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंच। भगवान पीछे, आगे सब देव लोग। सम्मान करने के लिए हिमाचल वासी नर नारी आए, आरती मंगल द्रव्य सब लेकर। सबसे पहले भगवान विष्णु को देखा और लोग इतने खुश हो गए कि लोगों को ये लगा कि बस यही दुल्हे महाराज है। तो जो सम्मान में आए थे लोग, उसने भगवान विष्णु को पूछ लिया किसी ने कि आप दुल्हे महाराज हैं। विष्णु भगवान ने कहा नहीं, मैं दुल्हा नहीं, दुल्हा तो पीछे है, हम तो बाराती हैं। तो हिमाचलवासी बहुत खुश हो गए कि हमारी पार्वती कितनी बड़भागी, उतनी उसकी तपस्या कितनी सफल हुई कि उसके पति की बारात में आए बाराती यदि इतने खूबसूरत हैं तो खुद दुल्हा कितना खूबसूरत रहा हो। विष्णु भगवान मन ही मन मुस्कुराते हैं कि दुल्हे को देखने के बाद पता लगेगा कि कितना खूबसूरत है। विष्णु का सम्मान, इंद्र का, सब देवों का सम्मान हुआ। और जब अंत में भगवान शिव का समुदाय आया और लोगों ने कितनी धारणा रखी थी कि दूल्हा कितना खूबसूरत रहा होगा, लेकिन जब देखा और दूल्हे और उसके समाज को देखा, बाप के गण जब ये पूरे समाज को लोग देखते हैं सब भागने लगे, मंगल ग्रह गिर गए, आरती बुझने की तैयारी में, कहीं किसी को अपने आप को संभालने की क्षमता न रही, भूत प्रेत समझ में ना आए ऐसे शब्द बोल रहे हैं। भगत गण भूत भयंकर भूताल नाथ या धनकर ते नाथ पे धान के ताली अंबार बाधाई जंकर भगत अंकर ते नाथ पे दम रूई दलंकर भगत अंकर शंकर ते कई लाश करे परमेश्वर मोध धरी पशुपालन काम प्रजाधन नाच करे भी काम प्रजाधन करे भी काम प्रजाधन। हमारे सौराष्ट्र की ये कविता है चारणी भाषा में, शिव जी का वर्णन है। भक्त गण भूत भयंकर भूताल नाथ जधंकार ते नाथ पे धन कृपा जंकर बाधाई जंकर बाहगत जंकर ते नाथ धमरी दजंकर बाह जंकर शंकर ते कैलाश करे परमेश्वर मोद धरी पशुपाल काम प्रजारण नाथ करे जीव काम प्रजारण नाथ कर जीव काम प्रजारण नाथ कर कर ते धरणी कर पशुपालन काम प्रजारण नाच करे जी काम प्रजारण करे जी काम प्रजारण नाच करे कर के धरण 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 मन हले धक के नट तो नमन धक धिकर धकन में धड़े चंपा दुदुवन तो दुकन फट फरन। ये सब शब्दों के अर्थ होते हैं, आपको शायद ये न लगे कि ये सब बना लिया है, धड़ा धड़ाता है सब, एक कविता है इसकी अद्भुत रचना। कर के धरण भगवान शंकर जी ने जब काम को जलाने के लिए तांडव किया, नृत्य किया, तब पृथ्वी की दशा क्या हुई, धरानी करके धरानी करणम करणम हरदे सुनात ब्रह्मांड हले, पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा था, धरती ने कनाते बोलने लगे, करके धरानी करणम करणम हरदे सुनात ब्रह्मांड हले, धकते नक दो धमाकत धाकत धाकत धिकत मेर डर मेरु हिलने लगा, मेरु के मूल से धरी पशुपालन काम प्रजा नाच करे जीव काम प्रजारण नाच करे जीव काम प्रजारण नाच भवके गण भूत भयंकर भूतल अधंकर ते नगते भड़के तले अंबर बाधाई जंदर पाह जतंकर ते नगते धमरूई जटंकर पाह जतंकर शंकर ते कई तरे परमेश्वर मोद धरी पशुपालन काम प्रजारण नाच करे जीव काम प्रजारण नाच करे जीव काम प्रजारण नाच करे जीव काम प्रजारण नाच करे आज काम भूत प्रेतों की आवाज और शिव के समाज को देखकर बिडरी चले, वाहन सब भागे। गोस्वामी जी कहते हैं सब वाहन भागे, लोग भयभीत भयकंपित होकर भागने लगे कि ये दुल्हा है या यम का दूत है। छोटे छोटे बच्चे अपने प्राण को बचाकर भागे और घर में जाकर उसके वडील माता पिता जो नहीं आए थे गांव के बाहर, उसकी गोद में जाकर कांपने लगे। माता पिता पूछने लगे कि हुआ क्या, दुल्हा कैसा है, तो बच्चे बताते। गोस्वामी जी का मनोविज्ञान अभ्यास देखिए, यहां कोई बड़ी उम्र वाले का निवेदन नहीं लिखा कि दुल्हा कैसा है, बच्चों का निवेदन लिखा। क्यों कि जब हमारी उम्र बढ़ती है तब हम चतुराई से भर जाते हैं, जैसा है ऐसा नहीं बोलते, बच्चा जैसा हो वैसा बोल देता। बहुत सुंदर बात बच्चे बता रहे हैं। गोस्वामी जी छंद लिखते हैं, दुल्हा कैसा है, तनु छार ब्याल कपार
भूषण नगन जटिल भयंकर भूषण जटिल भयंकर तनु नगन जटिल संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी बिकट मुख रजनी चरा नगन जटिल भयंकर संग भूत नगन जटिल भयंकर तनु चार ज्ञान कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर नगन जटिल भयंकर तनु बच्चे अपने माता पिता को बताने लगे कि दुल्हे ने अपने शरीर पर भस्म लगाई जैसा वैसा बोल दिया वस्त्र तो पहने ही नहीं सर्प के आभूषण पहने हैं दिगंबर दशा है पर माता पिता क्या बताएं उसके साथ जो भूत प्रेत उसके साथ जो संगी हैं वो कोई अच्छे नहीं सब भूत प्रेत पिशाचों का वृंद है छोटे छोटे बालक कहने लगे जिन्होंने बहुत पुण्य किया होगा वही जीवित रहेंगे और जो जीवित रहेगा वही ब्याह को देख पाएगा बाकी तो इस दुल्हे को देखकर मौत ही होती उसके सिवा और कुछ नहीं होने वाला ऐसा बालक बोलने लगे माता पिता उसको शांत करने लगे बाबा जी वर्णन करते हैं पूरे गांव में आतंक फैल गया ये क्या दुल्हा यहां भगवान शंकर जी ने सबको पूछा कि क्या कर इतना बड़ा अपमान हुआ शिव जी का फिर भी मन पर कोई असर नहीं सबको लेकर चले आए लग्न मंडप के द्वार यहाँ महारानी मैना जो पार्वती की माता है शिव जी की सास अपने आरती तैयार करके सजा करके दुल्हे की आरती करने के लिए स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं यहाँ एक बात महात्मा लोग बताते हैं इस पर गौर करें कि महारानी मैना ने आरती सजाई अपने जमाई को परिछन के लिए यानी उसके स्वागत के लिए बाबा जी कहते हैं तो इतने भाव और मनोभाव से उसने आरती तैयार की कि मैं ऐसे दीप तैयार कर जा रही हूँ आरती सजाकर और मेरे जमाई की आरती मैं करूँगी तो ये आरती के दीप को देखकर मेरा जामात कितना प्रसन्न हो जाएगा तो आरती लेकर आए और बड़ा भाव लेकर आई थी मैना लेकिन जब आरती करने गई तो हाथ से आरती गिर गई पहला कारण ये रहा कि सबसे पहले मैना ने ठीक से शिवजी को देखा ही नहीं यानी उसका भीषण रूप उसके नज़र में नहीं आया फिर भी आरती गिर गई इसलिए कि उसने सोचा था कि मैं इतने सुंदर दीप जलाकर आरती करूंगी तो मेरा जमाई बहुत खुश हो जाएगा लेकिन जब आरती करने गई एक वर्तूल ही पूरा नहीं हुआ और आरती गिर गई इसलिए कि शंकर जी के भाल के और देखा तो भाल में चंद्र को देखा चांद को देखते ही आरती गिर गई कि जिसके भाल में स्वयं चंद्र हो उसके सामने ये दीप की क्या कीमत आरती हाथ से छूट गिर गई और बाद में उसने देखा तब भगवान शंकर का विकट रूप देखा भगवान शंकर बहुत खूबसूरत है संस्कृत साहित्य से लेकर लोक साहित्य तक शंकर के रूप का वर्णन बहुत मिलता है कुंद इंदु समदेव उमारमन करुणा प्राकृत भाषा में गोस्वामी जी कहते हैं संस्कृत में कुंदेन्दीवर सुंदरावती बलो विज्ञान धामाभुभो सौभाग्यो वरधन्विनो श्रुतिनुतो गोविप्रवृंद प्रियो
मेरा कहने का मतलब बहुत सुंदर है चंद्रशेखर, बहुत खूबसूरत, लेकिन पहली बार ये चांद को देखकर आरती गिर गई, लेकिन दूसरी बार जब देखा तो उसका दूसरा रूप देखा, विकट रूप रुद्र ही जब देखा सब अबला भय कंपित हो गए। मैना को मूर्छा आ गई, मेरी बेटी ने इतनी तपस्या की और ऐसा पति, दूसरा रूप जब देखा। कंठ में सर्प को देखते ही मैना गिर पड़ी, सखियां उसको लेकर राजभवन में ले गई। शिव जी का दूसरी बार अपमान हुआ, फिर भी मन पर कोई असर नहीं। जीव को असर होती है, शिव को कैसे होती। अरे भजनानंदी व्यक्तियों को भी अपमान की असर नहीं होती तो ये तो साक्षात शंकर है, उसको अपमान की क्या असर होती। अपमान की असर और स्तुति की असर संसारियों को होती, साधु संतों को नहीं हुआ। शंकर जी ने कहा चलो जहाँ निवास हो चले, ये सब लोग स्वस्थ हो जाए, बाद में बुलाएंगे तो पुनः आएंगे, जरा भी अपमान की असर नहीं। सब गए, देवताओं को चिंता होने लगी। शिव जी के पास आकर देवता लोग कहने लगे भगवान आपके कंठ में सर्प को देखकर मैना जी गिर गई, उसको मूर्छा आ गई, क्योंकि वो लोग डरते हैं, स्वाभाविक हैं, आप शादी हो जाए तब तक ये सांप वगैरह निकाल दें, काल को देखकर कौन नहीं डरता। शंकर जी ने कहा देवता लोग हिमालय को बेटी देनी हो तो दे, ना देनी हो तो उसकी मर्जी, लेकिन मैं अपने सर्प को बिलग नहीं करूंगा। सास को तो राजी होना चाहिए कि उसका जमाई कंठ में काल डाल कर आया, उसकी बेटी का सौभाग्य अखंड हो गया, उसकी बेटी की मांग का सिंदूर कभी खत्म होने वाला नहीं, उसको तो राजी होना चाहिए क्योंकि मैं काल को डाल कर आया। मुझे तो लगता है महीना को ऐसा जमाई चाहिए जो उसकी बेटी का कंगन तुड़वा दे, उसको तो राजी होना चाहिए, मैं सर्प को बिलग नहीं करूंगा। मंत्रणा निष्फल हो गई, घर घर में लोग रो रहे हैं, घबराए हैं, ये कैसा दुल्हा है। यहाँ मैना की मूर्छा जब उतर गई तो अपनी बेटी के हाथ में मेहंदी सजाई चुकी थी, उसको गोद में लेकर मैना रोने लगी कि हे बेटी मैंने नारद का क्या बिगाड़ा कि तुम्हें ऐसी सलाह दी और मेरा जो बस रहा था भवन उसको उजाड़ दिया। कसकिन बर बहुरा जे ही देखे तुम्हारी सुंदरता दही, कसकी नर बहुरा जे ही देखे तुम्हारी, जो फल चाहिए सुर तरुणी सो बर बस बबूर गिला दही, विधाता ने तेरे पति को ऐसा क्यों बनाया, यदि ऐसा ही करना था तो तुम्हें इतनी सुंदरता क्यों, तुम्हें इतनी सुंदरता और तुम्हारे पति को ऐसा बना, जो फल कल्प वृक्ष को लगना चाहिए वो बबूर को लग रहा, मैं तेरी शादी नहीं होने दूंगी। स्पष्ट कर दिया मैना, बाबा जी लिखते हैं तुम संगीत गीत गीत गिरो पावक जरो जल निधि मग पड़ो, तुम सगीत गीत हो जरो जल निधि मग पड़ो, तो अपजस हो जग जीवत विवाहन हो, करो कसकीन हबर बहुरा जे ही विधि तुम्हि सुंदर, तुम्हि सुंदर तुम्हें लेकर पर्वत से गिर जाऊंगी, तुम्हें लेकर अग्नि में जल जाऊंगी, समंदर में डूब जाएंगी, घर मिट जाए तो भले ही मिट जाए, बदनामी मिले तो भले ही मिले, लेकिन मैं जब तक जीवित हूं तेरी शादी इस दुल्हे के साथ नहीं होने को मना कर। रोने लगी माँ, माँ का स्वभाव है, लेकिन बेटी कितनी सयानी है, हिमालय की बेटी माँ के पास बैठी है, कहा माँ तुम मेरी माँ हो, प्रसूता हो, तुम जो कहो सो मैं करूंगी, लेकिन एक बात बता, तुम में कोई ऐसी शक्ति है कि विधाता के लिखे अंक को तुम बदल सको? माँ माता पिता यदि विधाता के अंक को बदल सकते हैं तो संसार में कोई माँ बाप अपनी संतान को दुखी नहीं होने देते।